पृष्ठ संख्या 112। यूरोप ने इस युद्ध में बहुत अधिक रुचि ली और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ देशों ने युद्ध के इस परिणाम को खतरे का संकेत समझा। रूस ने दक्षिण की ओर अपने विस्तार की योजनाओं में इसे बाधक समझा तथा उत्तरी चीन में उसके प्रभाव के लिए खतरा पैदा हो गया। जर्मनी के सम्राट ने जापान की इस विजय को पूर्वी एशिया में सैन्य पुनर्जागरण के आरंभ का द्योतक समझा और उसे आशंका हुई कि कहीं अंततोगत्वा जापान की विजयों का यह प्रवाह विश्व में यूरोप की सर्वोच्चता की नींव को ही न डिगा दे। ऐसा प्रतीत होता है कि शांति संधि तय होने के पूर्व ही रूस ने चीन को इस बात का आश्वासन दिया था कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीप पर जापान का आधिपत्य नहीं रहने देगा। जैसा कि आशा थी, संधि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात शीघ्र ही रूस ने जापान से इस संधि के प्रति विरोध प्रकट किया तथा उसके मित्र राष्ट्र फ्रांस ने इसका समर्थन किया। इन विरोध पत्रों की भाषा नम्र लेकिन दृढ़ थी, क्योंकि उनका कहना था कि संधि में निहित शर्तों से सुदूर पूर्व के देशों में शांति को खतरा है। ठीक इसी समय जर्मनी ने भी जापान के पास एक विरोध पत्र भेजा, जिसकी भाषा और जिसके प्रेषण का तरीका कुछ रुक्ष एवं अपमानजनक था। अब जापान के पास इन देशों के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप उनकी बातों को मान लेने के अलावा और कोई चारा न था। उसका कोई मित्र देश न था और इन तीनों देशों की सेनाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने की सामर्थ्य भी उनमें न थी। इसलिए इन परिस्थितियों में यथासंभव अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जापान ने उनके परामर्श को स्वीकार कर लिया और कुछ अतिरिक्त हर्जाने के बदले चीन को लियाओतुंग प्रायद्वीप का प्रदेश वापस दे दिया। युद्ध के परिणाम से जापान की जनता को अत्यधिक निराशा हुई। कई लोगों की दृष्टि में पहली संधि ही काफ़ी नरम थी और अब अचानक लियाओतुंग प्रायद्वीप के चीन को सौंप देने से जापान के राष्ट्रीय गौरव को जबरदस्त धक्का लगा। अब जापान और रूस के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। मंत्रिमंडल ने शीघ्र ही स्थल एवं नौसैनिक विस्तार की नीति का अनुसरण शुरू कर दिया। करों में वृद्धि की गई और आगामी संघर्ष की तैयारी में चीन से प्राप्त हर्जाने से भी कहीं अधिक राशि व्यय की गई। जापान के नेताओं ने अनुभव किया कि यदि वह सुदूर पूर्व के मामलों में अपने हस्तक्षेप के अधिकार को यूरोप के देशों से सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे अपनी सेना और सैन्य सामग्री को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। स्थल सेना और नौसेना के विकास के साथ ही तत्सुमा और चोसू वर्ग की स्थिति भी मजबूत हो गई। दक्षिण की पूर्ववर्ती जागीरों के ये भूतपूर्व समुराई राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो चुके थे और अब जब राष्ट्र में तैयारी की बृहत योजना कार्यान्वित की जा रही थी तो सरकार की सभी नीतियों पर इनका पहले की भी अपेक्षा कहीं अधिक जबरदस्त प्रभाव था। इसलिए जैसा कि स्वाभाविक था, वे क्षेत्र विस्तार तथा महाद्वीप के बारे में प्रभावशाली नीति अपनाने के पक्ष में थे। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, सरकार के इस नीति का उग्र विरोध हुआ, लेकिन घटनाओं के चक्र ने जापान को साम्राज्यवादी नीति अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। चीन के युद्ध ने विश्व के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि गत 40 वर्षों में जापान में कितने महत्वपूर्ण और सर्वांगीण परिवर्तन हुए हैं। जापानियों ने पाश्चात्य शास्त्रों तथा पाश्चात्य पद्धतियों को सफलतापूर्वक प्रयुक्त करने की अपनी क्षमता का सुंदर परिचय दिया। जापान को चीन के मामले में हस्तक्षेप करने, कोरिया में अपने हितों को बढ़ावा देने तथा मंचूरिया में प्रवेश करने की मांगों को आसानी से स्वीकृति नहीं मिली। सन 1895 में अपने हस्तक्षेप द्वारा चीन की सहायता करने के लिए पारितोषिक के रूप में चीन ने रूस को साइबेरिया और यूरोप में अपने अधिकृत क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेल के निर्माण का विशेषाधिकार दिया। यह रेल मार्ग उत्तरी मंचूरिया को सीधे व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इससे जार को उत्तरी मंचूरिया पर, जो निर्विवाद रूप से चीनी क्षेत्र था, निश्चित नियंत्रण मिल गया। जापान को हर्जाने की रकम अदा करने के लिए चीन ने पेरिस से कर्ज इकट्ठा किया, जिसमें रूस चीन की ओर से जामिन बना। इस कार्य को चीन पर रूस की आर्थिक संरक्षण का एक पूर्वोदाहरण कहा जा सकता है, जिसने कम से कम चीन को रूस का ऋणी बना दिया। रूस ने कोरिया में अपना कुचक्र जारी रखा और जापान को परेशान किए रखा। वस्तुतः कोरिया में अपने कार्यों की दुर्व्यवस्था के कारण जापान रूस के हाथ की कठपुतली बन गया। कोरिया के राजमहल पर हुए एक आक्रमण में एक जापानी एजेंट फांस लिया गया। इस आक्रमण में कोरिया की महारानी की हत्या कर दी गई और राजा ने अपनी जान बचाने के लिए रूसी दूतावास में शरण ली, जहां वह 2 वर्षों तक रहा। प्रायद्वीप में अनेक व्यापारियों और अन्य जापानी अधिवासियों ने अपने उद्धत व्यापार में धोखेबाजी तथा अपने हिंसात्मक कार्यों से कोरियावासियों को व्यर्थ ही अपना विरोधी बना लिया। जापान को आशंका थी कि रूस के एजेंटों का कोरिया पर नियंत्रण केवल क्षणिक नहीं और यह लाभप्रद स्थिति प्राप्त कर वे महाद्वीप के साथ जापान वाणिज्य में बाधक होंगे तथा जापान के तटवर्ती प्रदेशों के लिए खतरा सिद्ध होंगे। सन 1897 में चीन में यूरोप के देशों के बीच पट्टे पर भूभाग लेने तथा अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए होड़ लग गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में पाश्चात्य राष्ट्र औपनिवेशिक विस्तार के लिए नए युग में प्रवेश कर रहे थे। हाल ही में अफ्रीका का विभाजन हुआ था। समुद्र के मध्य स्थित अनाधिकृत द्वीपों पर विभिन्न देश कब्जा कर रहे थे, जिससे सभी आसक्त राष्ट्रों की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गया था। जापान के साथ युद्ध में चीन की आसक्तता स्पष्ट हो गई थी। यूरोप के देश इस स्थिति का लाभ उठाने में देर करने वाले न थे। सन 1897 में कुछ चीनियों ने कुछ जर्मन धर्म प्रचारकों की हत्या कर दी। इस घटना से लाभ उठाकर जर्मनी ने उपद्रव के स्थान कियाओ चोउ की, जो शांतुंग प्रांत में स्थित सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, 99 साल के लिए पट्टे पर मांग की। उसने यहाँ पर चिंगाताऊ नामक आदर्श नगर का निर्माण किया तथा इसे अंतर्वर्ती प्रदेशों के साथ रेलमार्ग द्वारा संबद्ध किया। रेलमार्ग के निर्माण के लिए उसे चीन से रियायत मिल गई थी। उसे प्रांत की बहुमूल्य कोयले की खानों को चलाने का भी विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। कालांतर में रूस ने भी चीन से मुआवजे के रूप में लियाओतुंग प्रायद्वीप में स्थित पोर्ट आथर तथा देयरेन बंदरगाहों पर पट्टे पर भूमि की मांग की, जो उन्हें दे दी गई। इस प्रायद्वीप से रूस ने 3 वर्ष पूर्व ही जापान को वंचित किया था। रूस ने इन स्थानों को रेलमार्ग की एक शाखा द्वारा साइबेरियाई रेलमार्ग से संबद्ध किया। एक रूसी चीनी बैंक स्थापित किया गया, जो दोनों देशों का एक संयुक्त उद्यम था। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इसके प्रथम साझेदार को विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस प्रकार साइबेरियाई रेलमार्ग के लिए वर्ष के अधिकांश भाग में ही मुक्त बंदरगाह प्राप्त करने में रूस सफल हुआ, जहां से वह समस्त मंचूरिया तथा उत्तरी चीन पर नियंत्रण बनाए रख सकता था। रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों के व्यापार के लिए मंचूरिया के बंदरगाहों को बंद कर वह जापान के वाणिज्यिक और औद्योगिक विस्तार को रोक सकता था, और रूस ने ऐसा ही करने का प्रयत्न भी किया। इसी समय ब्रिटेन ने वे हाईवे में पट पर भूमि प्राप्त कर ली। वे हाईवे किलेबंदी द्वारा सुरक्षित बंदरगाह था, जो शांतुंग की ओर से पिकिंग के प्रवेश मार्ग को नियंत्रित करता था। इस प्रकार इसने यांगत्सी घाटी में अपने लिए एक प्रभाव क्षेत्र बना लिया था, जहां उसे वाणिज्य में तथा रेलों के निर्माण, उद्योगों एवं खानों के विकास में पूंजी लगाने की प्राथमिकता प्राप्त थी। फ्रांस को भी दक्षिणी चीन में पट्टे पर भूमि तथा एक प्रभाव क्षेत्र प्रदान किया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक ब्रिटेन और फ्रांस जापान के बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी न थे। बॉक्सर विद्रोह के दमन में जापान का योग। विभिन्न भूभागों को पट्टे पर देने तथा साम्राज्य को विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करने के पश्चात चीन में एक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। युवक सम्राट के नेतृत्व में सुधारवादी लोगों ने जापान की तरह पाश्चात्य प्रणाली के अनुकरण पर राष्ट्र के पुनर्गठन का प्रयत्न किया। इसकी प्रतिक्रिया 1900 के सशस्त्र विद्रोह के रूप में सामने आई, जिसका संचालन राजमाता की अनुमति से राष्ट्र को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से बचाने के लिए अनुदार दल ने किया था। इस अनुदार दल को बॉक्सर कहा जाता था। पीकिंग में दूतावास में रहने वाले विदेशियों पर आक्रमण किया गया और संपूर्ण उत्तरी चीन में आरक्षित प्रदेशों में रहने वाले ईसाई धर्म प्रचारकों तथा उनके द्वारा धर्मांतरित व्यक्तियों की हत्या की गई। फलस्वरूप संबद्ध देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना का संगठन किया। जापान ने पिकिंग में उपद्रवग्रस्त विदेशियों को बचाने के कार्य में सहयोग दिया, जिससे चीन के मामले में उसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बोलने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। रूस और जापान के बीच युद्ध से पूर्व की घटनाएं। रूस ने बॉक्सर विद्रोह का लाभ उठाकर अपने नागरिकों तथा संपत्ति की रक्षा के लिए शीघ्र ही अपने सेनाएं मंचूरिया भेज दी। उसने विद्रोह शांत हो जाने के पश्चात भी अपनी सेनाएं उस क्षेत्र में कायम रखी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस क्षेत्र पर अपना अस्थायी आधिपत्य बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इसका जापान ने विरोध किया। 1898 में फिलीपींस में प्रवेश पाने के बाद अमेरिका के सुदूर पूर्व के प्रति नई नई रुचि जागृत हुई थी। उसने चीन के अन्य क्षेत्रों की भांति मंचूरिया में भी प्रादेशिक अखंडता के सिद्धांत तथा मुक्त द्वार नीति अर्थात सभी राष्ट्रों के नागरिकों के लिए समान आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषाधिकार को लागू करने का प्रयास किया। पृष्ठ संख्या 116। रूस ने अपनी सेनाओं को वापस लौटा लेने का वचन दिया। वस्तुतः उसका इस मांग के सामने झुकने का कोई इरादा नहीं था और उसने चीन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहा जिसके अनुसार मंचूरिया रूस का ही एक प्रांत बन जाता। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के कड़े विरोध के कारण उसे इस उद्देश्य में सफलता न मिली। इतना होने पर भी उसने उस प्रदेश में विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिए और आमूर तथा मंचूरिया के इलाके में अपने हितों की व्यवस्था के लिए 1903 में एक वायसराय की नियुक्ति की। इनमें से मंचूरिया के प्रदेश को तो वह ऐसा समझता था मानो वह पहले से ही उसका अपना क्षेत्र हो। जापान को यह बात बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी कि उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता था कि रूस का मंचूरिया से सेनाएं हटाने का कोई इरादा नहीं है। उसने इस प्रदेश के मामलों में जापान के हस्तक्षेप के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। रूस के उस क्षेत्र में बने रहने से जापान के उस प्रदेश में प्रवेश द्वार के अवरुद्ध हो जाने तथा उसके वाणिज्य के विकास में बाधा पड़ने की संभावना थी। उसके कोरिया में जमे रहने से जापानियों के हितों को खतरा था। आरंभ में जापान ने इस समस्या को शस्त्रों के प्रयोग के बिना ही सुलझाना चाहा तथा बातचीत द्वारा समझौता करने का प्रयत्न किया। लेकिन रूस ने मंचूरिया के मामले में जापान के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि उसने कोरिया में जापान के विशिष्ट हितों को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उसने वहां पर जापान के नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिबंध का आग्रह बनाए रखा। अगर रूस सुदूर पूर्व में जापान सरकार के अनुसार प्रभाव क्षेत्र के उचित विभाजन के लिए सहमत हो जाता, तो संभवतः जापान इस विषय में किसी समझौते का स्वागत करता। आगामी संघर्ष का पूर्वानुमान करके जापान ने अपनी स्थल सेना एवं नौसेना को सशक्त बनाने का प्रयत्न जारी रखा और ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। यह अंगल जापानी संधि 1902 के आरंभ में तय हुई थी, जो मात्र चीन व कोरिया से ही संबंधित थी। इसमें चीन में ब्रिटेन के और चीन तथा कोरिया में जापान के विशिष्ट हितों को मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अनुसार यदि कोई मित्र देश किसी अन्य देश के साथ अपने इन हितों की रक्षा के लिए युद्ध करे तो दूसरा देश त्रस्त रहेगा तथा अपने प्रभाव का उपयोग कर वह शत्रु देश को मित्र देश पर आक्रमण न करने का आग्रह करेगा। यदि एक अथवा एक से अधिक राष्ट्र मित्र देश के विरुद्ध शत्रु देश की मदद करे तो मित्र राष्ट्र उसकी सहायता के लिए आएगा। दोनों राष्ट्र युद्ध अथवा शांति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हो गए। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में चीन के वाणिज्य में इंग्लैंड का जो महत्वपूर्ण स्थान था उसे अब खतरा दिखाई देने लगा था और उसे विशेष रूप से रूसी आक्रमण का भय था। इसलिए ब्रिटेन दिल से चाहता था कि जापान उसके प्रतिद्वंद्वी पर आक्रमण करे। इस समझौते से मुख्य रूप से जापान को ही लाभ था, क्योंकि इससे जापान को विश्व के प्रमुख वित्तीय, नौसैनिक तथा वाणिज्यिक देश के साथ संधि का प्रतिष्ठित दर्जा मिल जाता और वस्तुतः आगामी संघर्ष में इसने रूस को पृथक कर दिया था। यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड के साथ युद्ध मोल लेकर जार का साथ देने को तैयार न थे। इससे जापान को लंदन के बैंकों का भी अत्यधिक वांछित सहयोग मिल गया।